फ्रेंड्स, आज का दिन है बजट का, यानी 1 फरवरी 2023। आज बजट पेश हुआ है, जिसकी जो हाइलाइट्स हैं उनके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। ये बजट है 2023-2024, जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फरवरी 1, 2023। इसमें इन्होंने बहुत कुछ दिया है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि जेल में बहुत सारे गरीब लोग बंद हैं उनके संबंध में बात की है, और अपने आप पर्यटन पर भी जोर देने की, यानी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बारे में बात की है। हमारे यहाँ जो गाय हैं और जो गोवर्धन है उसके संबंध में भी इन्होंने काफ़ी कुछ स्कीम लाने के बारे में बात की है। जो MSME सेक्टर है, जो कोविड के दौरान काफ़ी लॉस में चला गया है, तो उनके संबंध में भी इन्होंने बात की है। पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड के संबंध में बात की है। इसी तरह से SEZ के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की बात की है, और इसके साथ साथ MSME सेक्टर में कुछ इंटरेस्ट रेट कम करने की भी बात की है, और बुज़ुर्गों के लिए भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट के संबंध में बात की है इन्होंने। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हमारी महंगी और सस्ती भी हो रही हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल सस्ता हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हो रही, ये EV व्हीकल हैं, साइकिल है, TV है, ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं। महंगे में हमारा सिगरेट महंगा हो रहा है, विदेशी किचन चिमनी महंगी हो रही है, चांदी के बर्तन हैं, इम्पोर्टेड डोर्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे महंगे हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये महिलाओं के लिए भी बचत योजना ला रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे, उसकी भी हम लोग चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन इन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने कही, ये 2023-24 के बजट के बारे में, ये अमृत काल में पेश किया हुआ पहला बजट है, और ये हमारे इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र होने के 75वें वर्ष में आया है, और आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी बहुत ब्राइट स्टार के रूप में जानी जा रही है। इसमें बहुत, जैसे कि सबका प्रयास और जन भागीदारी को भी प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। पैंडेमिक के बारे में इन्होंने बताया है कि ओवर 80 करोड़ पर्सन्स फॉर 28 मंथ्स, इतने लोगों को इन्होंने खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं दिया है। और इसके संबंध में इन्होंने एक और चीज़ बोली जो कि G20 से संबंधित है, G20 प्रेसिडेंसी स्टीयरिंग द ग्लोबल एजेंडा थ्रू चैलेंजेस। तो इसमें भी इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा प्राथमिक है, उसके आधार पर। इसके अलावा इन्होंने और भी कई बात की हैं, जैसे कि हमारी पर कैपिटा इनकम के बारे में है कि वो भी अब लगभग पहले से डबल से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी की स्थिति है, वो पहले 10वें स्थान पे थी, आज वो 5वें लार्जेस्ट स्थान पर है, यानी वर्ल्ड के 5वें स्थान पर आ गई 10वें स्थान से। इसके अलावा इन्होंने जो डिजिटल इंडिया के बारे में बात की, उसमें बताया कि 7,400 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स ऑफ ₹126 लाख करोड़ थ्रू UPI इन 2022। तो ये भी बढ़ता जा रहा है हमारा UPI पेमेंट, और डिजिटल के बारे में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद अमृतकाल के विषय में इन्होंने बात की कि हम अमृतकाल में इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर टू अचीव दिस जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका प्रयास इज एसेंशियल। तो ये बहुत आवश्यक भी है, और इसको भी इन्होंने इसमें कवर किया है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, रूरल वुमेन इन 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्होंने बनाए हैं, जिसके माध्यम से सबको सहायता पहुंचाई जा रही है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास है, इसमें भी जो विश्वकर्मा समाज है उसके लिए बहुत काम किए जा रहे हैं, और उनको एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग, नॉलेज, मॉडर्न डिजिटल टेक्निक्स एंड एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ब्रांड प्रमोशन, लिंकेज विद लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स, डिजिटल पेमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, ये इसमें भी इनके ध्यान दिया जाएगा, जिससे इनका व्यापार और बढ़ सके। टूरिज्म में ये चाहते हैं कि द कंट्री ऑफर्स इमेंस अट्रैक्शन फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट। ग्रीन ग्रोथ पर इनका फोकस है, प्रायोरिटी ऑफ दिस बजट। अब इस प्रायोरिटी ऑफ दिस बजट में हम देखेंगे कि इन्होंने सप्त ऋषि की बात की है, यानी सप्त ऋषि क्या है, इनके 7 फाउंडेशन हैं जो ये बात कर रहे हैं। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीसिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। सबसे ज़्यादा इन सात चीज़ों पर इनका फोकस है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात इन्होंने की है, जिसमें OBC, शेड्यूल कास्ट, वुमेन्स, फार्मर, स्पेसिफिक कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांगजन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब के विषय में इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पर भी ये ध्यान दे रहे हैं कि क्रॉप प्लानिंग कैसे होगी, उनके हेल्थ कैसे सही रहेगी, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू फार्म इनपुट्स, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, हेल्प फॉर क्रॉप एस्टिमेशन, मार्केट इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीटेक इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स, तो इसको भी ये सपोर्ट करेंगे। एक्सीलरेटर इन्होंने जो द फंड विल एम एट ब्रिंगिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन फॉर चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करेंगे और जो इनको परेशानी होती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है और इनोवेशन कैसे करना, वो सब चीज़ों पर भी इनका ध्यान है। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम्स, इसके लिए भी लगभग 2200 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। श्री अन्न में कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्न इन द वर्ल्ड, तो इस पे बहुत ज़रूरी बात करना था और हमारे देश में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो इनको प्रोत्साहित कैसे किया जाए, क्योंकि लोग इसके बारे में आजकल के लोग बहुत कम जानते हैं, जबकि हमारे पुराने लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी जान लेते हैं। वी ग्रो सेवरल टाइप्स ऑफ श्री अन्न, सच ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोडो, चीना एंड सेमा। These have a number of health benefits and have been an integral part of our food of centuries. शताब्दियों से हमारे यहाँ ये सब चीज़ें खाई जाती रही और उगाई जाती रही हैं और जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हेल्थ में बहुत फ़ायदा करती हैं, लेकिन आजकल ये विलुप्त की स्थिति में है, तो इस पर भी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है और उस पर रिसर्च करके इंटरनेशनल लेवल पर इसको स्थापित करना चाहती है। एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए इन्होंने बात की है कि 20 लाख करोड़ रुपए उस पर भी ये खर्च करेंगे, उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज पर भी खर्च करेंगे। अब जो बात आती है नर्सिंग कॉलेजेस, इन्होंने बात की है कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलेंगे, जिससे हमारी मेडिकल हेल्थ के बारे में ये फोकस कर रहे हैं। मेडिकल रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे, फार्मा इनोवेशन पर भी काम किया जाएगा और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेस, इस पर भी, तो सरकार का इस तरीके से हेल्थ पर भी संबंधित चीज़ों पर भी फोकस है। टीचर्स पर वो फोकस कर रहे हैं कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो अच्छी से अच्छी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकें। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, तो एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की भी बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धन हो सके और इसके लिए वो कोलैबोरेशन एनजीओ के साथ भी जुड़ करके काम करेंगे। रीचिंग द लास्ट माइल्स, मतलब हमारे जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल अफेयर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए भी काम करेंगे कि वो लास्ट, मतलब जो उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं और जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां पर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वहां तक पहुंचने की भी बात की जा रही है। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे, जो कि 38,800 टीचर और 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे लगभग, जिसमें 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को शिक्षा दी जा सकेगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात इन्होंने की, सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स, जो हमारे जेल में बंद कैदी हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको सहायता नहीं मिल पा रही और वो अपनी बेल नहीं करा पा रहे हैं, तो उनकी बेल हो जाए इसके लिए भी सरकार काम करेगी और उनको फंड वगैरह उपलब्ध कराएगी जिससे कि वो बाहर आ सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात भी इन्होंने की है। इसके अलावा सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह भी की इन्होंने, आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू द 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर 1 more year टू इस पर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू इंसेंटिव वाइज देम फॉर कम्प्लीमेंट्री पॉलिसी एक्शन विद ए सिग्निफिकेंट इन आउटले ₹1.3 lakh crore, यानी 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा ये देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे वो तमाम काम जो नहीं कर पा रहे हैं वो कर सकें, यानी उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा। रेलवे को भी वो 2.40 लाख करोड़ रुपए देने वाले हैं, उसके ऊपर खर्च करने वाले हैं। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर्स और वाटर एरोड्रम्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये करने वाले हैं, जिसमें कि फॉर इनहेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिजनेस करते समय जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ईज करने की बात कर रहे हैं, उसमें जो कंप्लायंसेस थी उसको कम करने की बात कर रहे हैं। यानी 39,000 कंप्लायंसेज ऐसी हैं जिनको रिड्यूस करेंगे और मोर देन 3,400 लीगल प्रोविजन हैव बीन रिक्रिमिनलाइज्ड, और लगभग 34 से लीगल प्रोविजन ऐसे हैं जिसको भी ये हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये ईज ऑफ बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें जो बहुत सारी कंप्लायंसेस फालतू की हैं उनको कम किया जाएगा। उसके बारे में भी आगे बताया कि कैसे कम किया जाएगा और कैसे हम लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं बहुत शॉर्ट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा बजट है तो थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा। फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ मेक AI, तो आजकल AI का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उसके संबंध में भी इन्होंने बात की कि उस पर भी ये काम करेंगे और इसके लिए 3 सेंटर एक्सीलेंस सेंटर खोलेंगे जो AI पे काम करेंगे और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कई चीज़ों में हमें फ़ायदा मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नो योर कस्टमर KYC। KYC के लिए आपको पता है कि जगह जगह पर KYC देनी पड़ती थी, उसके लिए इस तरह का ये लाने वाले हैं जिससे कि एक ही जगह पे KYC दे करके और सारी जगह वही काम आ जाए, बार बार KYC देनी ना पड़े। 1-stop solution फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग। तो एड्रेस और आइडेंटिटी के लिए जो हम लोगों को अलग अलग देना पड़ता है उसकी भी बात इन्होंने की। विल बी एस्टेब्लिश यूजिंग DigiLocker सर्विसेज एंड आधार एज फाउंडेशनल आइडेंटिटी। तो इसके लिए इन्होंने DigiLocker की बात की है। उसके अलावा कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के लिए इन्होंने एक पैन का इस्तेमाल किया कि पैन के माध्यम से उस बिजनेसमैन को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस अब ये लाने वाले हैं कि जो तमाम तरह के रिटर्न फाइल हो रहे हैं, फॉर ऑब्टेनिंग द नीड फॉर सेपरेट सबमिशन ऑफ सेम इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी। यानी गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसियों के लिए सेम इंफॉर्मेशन हमें बार बार जो देनी पड़ती थी वो बार बार ना देनी पड़े, उसके लिए हम लाएंगे यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस लाएंगे। विल बी सेटअप सच फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न इज सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑन ए कॉमन पोर्टल विल बी शेयर्ड विद अदर एजेंसीज एज पर फाइलर्स चॉइस। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी उन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकेगा, बार बार उसको अलग अलग फिल करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसी के साथ विवाद से विश्वास की स्कीम की बात कर रहे हैं, रेली फॉर MSMEs। तो MSMEs को बहुत ज़्यादा सुविधा ये देने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका कोरोना काल में लॉस हुआ है, उसके संबंध में बात कर रहे हैं। ई कोर्ट्स की बात जरूरी थी आपसे करना। ई कोर्ट फॉर एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस Phase 3 ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च विद एन आउटले ऑफ ₹7,000 करोड़। तो उसके लिए तीसरी किस्त जो जारी होगी वो 7,000 करोड़ रुपए की ई कोर्ट्स के लिए जारी होने वाली है। DigiLocker की बात हम लोग आगे कर चुके हैं, उसी के संबंध में इन्होंने फिर से और डिटेल में बताया। 5G सर्विसेज के बारे में इन्होंने बताया किस तरह से उसमें काम होगा। ग्रीन ग्रोथ के बारे में बताया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताया है, तो उसके लिए भी 19,700 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं व्हीकल रिप्लेसमेंट की। तो आपको मालूम है व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम ये लेकर के यहाँ, आई हैव एलोकेटेड एडिक्वेट फंड्स ऑफ स्क्रैप ओल्ड व्हीकल्स। तो ओल्ड व्हीकल्स के लिए ये जो है फंड जारी करेंगे फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट विल आल्सो बी सपोर्टेड इन रिप्लेसिंग ओल्ड व्हीकल्स एंड एम्बुलेंसेज। तो ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें भागीदारी करेगी, अभी पब्लिक के लिए उतना इन्होंने बात नहीं की है, ज़्यादातर फोकस केवल गवर्नमेंट पे किया है। यूथ पावर के लिए अमृत पीढ़ी लेकर के आ रहे हैं जिस पर ये काम करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 लॉन्च करेंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये और फोकस करने वाले हैं, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ। टूरिज्म की बात जैसा मैंने कि बताया था कि 50 डेस्टिनेशन ऐसे बनाने वाले हैं जिससे हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। क्रेडिट गारंटीज फॉर MSMEs, तो MSMEs के लिए इन्होंने कहा कि 95% तक की गारंटी ये देंगे। नेशनल और आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, एक ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम ये लेकर के आए हैं। दिस विल ऑफर डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू ₹2,00,000। इन द नेम ऑफ द वुमेन और गर्ल फॉर ए टेनर ऑफ 2 years एट फिक्स इंटरेस्ट रेट 7.5% विद पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन। तो 2 लाख तक महिलाओं के नाम से बचत करने पर 7.5% का ब्याज ये देंगे। इसी तरह से सीनियर सिटीजन की भी बात की इन्होंने, उसकी लिमिट को जो डिपॉजिट लिमिट थी उसको 15 लाख से 30 लाख तक कर दिया है। और इसके अलावा जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर मंथली इनकम अकाउंट स्कीम थी उसमें भी 4.5 लाख से बढ़ा करके 9 लाख कर दिया है और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख तक कर दिया है। तो ये काफ़ी कुछ ये इन्होंने रिलीफ देने की बात की है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत जल्दी इनकम टैक्स में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे। इसके पहले इन्होंने बात कर लेते हैं टेलीविज़न पे भी एक्साइज ड्यूटी घटा दी, सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर बढ़ा दिए 7.5% से 15%, तो ये महंगा हो जाएगा। इसके प्रीसियस मेटल की बात इन्होंने की कि जो डोर्स वगैरह बाहर से आते हैं वो उस पर भी महंगा हो जाएगा। और इसी तरह कंपाउंडेड रबर पर भी इन्होंने ड्यूटी को बढ़ा दिया है। MSME एंड प्रोफेशनल्स के लिए एक ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की, MSMEs आर ग्रोथ इंजन ऑफ आवर इकोनॉमी, माइक्रो एंटरप्राइजेज विद टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ एंड सर्टन प्रोफेशनल्स विद टर्नओवर ऑफ अप टू ₹50 लाख कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रिजेंटिव टैक्सेशन। तो प्रिजेंटिव टैक्सेशन का लाभ ये लोग ले पाएंगे। और इसको इन्होंने किया कि आई प्रपोज टू प्रोवाइड इनहैंस लिमिट ऑफ 3 करोड़, यानी 2 करोड़ को बढ़ा करके 3 करोड़ और 50 लाख को बढ़ा करके 75 लाख रुपए तक इन्होंने कर दिया है। तो ऐसे ये प्रपोजल हमारे बजट में आए हैं। अब स्टार्टअप्स की बात कर लें तो इनकम टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप फ्रॉम 31/3/2023 टू 31/3/2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और अपील्स की भी बात करें तो पेंडेंसी को घटाने के लिए उन्होंने क्या किया, 100 ज्वाइंट कमिश्नर और अपील्स के लिए ये लाने वाले हैं। बेटर टारगेटिंग फॉर टैक्स कंसेशंस, फॉर बेटर टारगेटिंग ऑफ टैक्स कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस आई प्रपोज टू कैप डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउसेज अंडर सेक्शन 54 एंड 54F ₹2.10 करोड़। इसके अलावा TDS पर भी ये चीज़ें ये चेंज करने वाले हैं, जिसको डिटेल में आगे हम लोग लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने में ही समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। इसके अलावा इनकम टैक्स की जो हम लोग बात कर रहे थे वो कर लेते हैं। द फर्स्ट वन कंसर्न रिबेट, करंटली दोज विद इनकम अप टू ₹5 लाख डू नॉट पे एनी इनकम टैक्स इन बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम। आई प्रपोज टू इंक्रीज द रिबेट लिमिट ₹7 लाख इन द न्यू रिजिम। तो 7 लाख किसके लिए की गई है, न्यू रिजिम के लिए की गई है। 10% इन द न्यू टैक्स रिजिम विद इनकम अप टू ₹7 लाख विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। तो जो लोग न्यू रिजिम में हैं वो 7 लाख तक की इनकम अगर उनकी है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा जो न्यू रिजिम में नहीं है उनके लिए क्या है, द सेकेंड प्रपोजल रिलेट्स टू मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स। आई हैड इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2020 द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजिम विद 6 इनकम स्लैब स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 लाख। आई प्रपोज टू चेंज द टैक्स स्ट्रक्चर इन दिस रिजिम बाई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स टू 5, जो 7 थे उनको 5 स्लैब्स कर देंगे, एंड इंक्रीजिंग द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट ₹3 लाख। तो जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट होती थी उसको इन्होंने बढ़ा करके 3 लाख किया है और न्यू रिजिम के लिए वो 7 लाख किया है। और यहाँ पे टैक्स रेट का जो स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज किया वो भी देख लेते हैं। 0 to 3 लाख तक नील है, 3 लाख to 6 लाख तक 5% कर दिया, 6 to 9 लाख तक 10%, 9 to 12 लाख तक 15% एंड 12 to 15 लाख तक 20%, और अबव ₹50 लाख पर इन्होंने 30% कर दिया। तो ये इनकम टैक्स में इन्होंने एक चेंज किया है जो काफ़ी समय से चेंज ही नहीं हुआ था, तो उसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। स्लैब रेट में भी काफ़ी अंतर आ जाएगा और 2.5 लाख वाले को तो केवल इन्होंने 50,000 बढ़ा करके 3 लाख रुपए तक ही किया है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो उसमें 52,500 रुपये तक का कर दिया है। तो ये था आज का बजट। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रह गई हैं या जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो उसके 1 by 1 हम आपको अपने चैनल पर डिटेल में वीडियो आगे अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।